mysteries, theories, and the unknown. The India Classified Podcast, a Red FM original.
वो आदमी एक सांप के सामने खड़ा था। ये सांप 15 फुट लंबा था, यानी लगभग 2 मंजिल की बिल्डिंग जितना बड़ा। आदमी ने चालाकी से उस सांप का ध्यान भटकाया और अपनी कमर बंद से खंजर निकालकर उस सांप के सर की ओर कूदा और खंजर उसके सर पे मारा, लेकिन निशाना चूक गया और उस सांप ने पलटकर उस आदमी का सर अपने ताकतवर जबड़े में दबोच लिया। चंद सेकंड में उस आदमी की छाती में दांत गड़े हुए थे और दांतों से निकलता जहर उस आदमी की खाल जला रहा था। जहर सांप के मुंह से गिर के आसपास के पेड़ों की टहनियों और पत्तों पर गिर रहा था। उस आदमी को पूरा निगलने के बाद सांप वहां से चला गया। सांप के जाने के बाद मालूम हुआ कि जिस जगह पर सांप और वो आदमी लड़ रहे थे, उस जगह के आसपास करीब 20 आदमी छुपे हुए बैठे थे। उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर पत्तों पे लगा हुआ जहर एक बर्तन में गिराया। वो मुश्किल से 5 चम्मच के बराबर जहर था, लेकिन उस बर्तन को हिफाजत से कपड़े में लपेटकर एक घास के भरे हुए संदूक में रखा गया। अपने साथ लाए गए ऊंटों और घोड़ों के झुंड के साथ वो 20 आदमी वहां से रवाना हो गए। ये 20 सैनिक रेगिस्तान पार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये खास किस्म के सैनिक थे जिनका उद्देश्य उस जहरीले सांप के जहर को लाना था। 12 घंटे के सफर के बाद ये सैनिक अपनी मंजिल तक पहुंचे। एक रास्ता था जहां सड़क का रंग लाल था। ये निशानी थी उस जगह की जो उनकी मंजिल थी। कुछ देर उस सड़क पे चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंच गए। ये एक कैंप था जहां दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। इस महिला ने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था और उस डंडे का सहारा लेकर वो वहां सबसे आगे खड़े सैनिक के पास आई। उस सैनिक ने उसे एक स्क्रॉल दिया। बूढ़ी औरत ने उस स्क्रॉल को खोला और देखा उस पर वहां के राजा की मोहर है। बुढ़िया ने अपने जूड़े में से एक पिन बाहर निकाली, पास रखी बाल्टी में वो पिन गिराई और बाल्टी के पानी का रंग बदलने लगा। बाल्टी का रंग नीला हो गया था। फिर उस औरत ने स्क्रॉल को पानी में भिगोया और बाहर निकाला। राजा की मोहर धुल गई और वहां कुछ लिखा हुआ था जो नीले रंग में दिखने लगा। सैनिक की नजर उस स्क्रॉल पे नीले रंग से लिखे मैसेज पर पड़ी। बुढ़िया ने वो मैसेज पढ़ के अपनी नजरें घुमाई तो सैनिकों का लीडर तलवार लिए खड़ा था। बुढ़िया तलवार देख के मुस्कुराने लगी। जितने में वो सैनिक अपनी तलवार से बुढ़िया पे वार करता, उतने में बुढ़िया ने हाथ में पकड़ा डंडा उठा के उस सैनिक के सर पे दे मारा। फिर अपने हाथ में डंडा पकड़ के वो किसी सांप की तरह फुंकारने लगी। बाकी के बचे 19 सैनिक अपने लीडर के टूटे हुए सर को देख रहे थे। सैनिकों ने एक साथ उस औरत पर हमला कर दिया, लेकिन कुछ ही समय में एक एक करके सभी सैनिक मारे गए। किसी की आंतें बाहर निकल आई थी, किसी के गर्दन की हड्डी टूट गई थी और वो दम घुटने का इंतजार कर रहा था। किसी की तलवार उसी के सीने में घोप दी गई थी और किसी का सर ऐसे कुचल दिया गया था जैसे उसके सर के ऊपर से हाथी निकल गया हो। खून और लाशों से घिरी हुई वो बुढ़िया इस तरह शांत खड़ी थी जैसे कि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उस स्क्रॉल पे नीले रंग से जो संदेश में राजा ने कहा था कि मैंने 21 सैनिकों को जहर लेने के लिए भेजा है, जितने भी सैनिक आप तक जहर लेके आने में कामयाब होते हैं तो आप उन्हें वापस जाने नहीं देंगी, क्योंकि जहर को कहां पहुंचाया गया है ये किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। बुढ़िया ने उस क्रोल का कपड़ा जला दिया और संदूक लेकर अंदर कैंप में चली गई। कैंप में एक टेंट में बुढ़िया ने वो संदूक रखा और उसमें से जहर का बर्तन निकाल के एक वैद को दे दिया। वैद ने उस सांप के खालिस जहर से एक चम्मच भरा और वहां पे सो रही एक 2 साल की बच्ची को पिला दिया। जहर पिलाते ही बच्ची का शरीर नीला पड़ने लगा, उसे बुखार आ गया और वो जोर जोर से रोती रही। करीब 3 घंटे बाद उसका रोना बंद हुआ और फिर देखा कि उसके शरीर से नीला रंग भी चला गया था। ये कहानी 400 साल पहले की है। अब एक और कहानी सुनाता हूं। साल था 2015, जर्मनी। 21 नवंबर शाम 6 बजे म्यूनिक शहर में मौजूद ग्रैंड होटल सजाया जा रहा था। इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून उस होटल में आकर रुके हुए थे। इस होटल में एक रात का टैरिफ 2 लाख रुपए के बराबर है, तो आप समझ सकते हैं कि उस होटल में आने वाला इंसान जरूर कोई खास ही होगा। होटल की अपनी सिक्योरिटी प्लेटिनम ग्रेड की थी, यानी किसी के लिए भी इस होटल में बिन बुलाए घुसना नामुमकिन था। बिजनेस टाइकून के आने से यह सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई थी। उस बिजनेस टाइकून की अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी उसके साथ आई थी, जिसमें 12 आर्म्ड गार्ड्स शामिल थे। एक आदमी की सिक्योरिटी के लिए 12 हट्टे कट्टे मिलिट्री ट्रेन गार्ड्स, जो एक इशारे में किसी की भी जान ले सकते हैं। इसके अलावा 6 फुट 10 इंच का वो बिजनेसमैन खुद ही एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था। इन शॉर्ट, ही वॉज अ पावरफुल मैन इन ऑल वेज पॉसिबल। बिजनेस टाइकून आने के बाद वो अपने कमरे में चेक इन करता है और फिर उसकी खुशामद के लिए सभी इंतजाम पेश किए जाते हैं। किसी भी 5-स्टार होटल में अमूमन 3 तरह के लोग दिखते हैं, वो जो मेहनत और लगन से काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, दूसरे वो जो सरकारी पैसे पर ऐश करते हैं, और तीसरे वो जो बता नहीं सकते कि काम क्या करते हैं, सिर्फ दिखा सकते हैं कि पैसा कितना कमाते हैं। खैर, ये बिजनेसमैन तीसरी कैटेगरी का था। इसके खिलाफ करप्शन के कई चार्जेस थे, लेकिन अगर अच्छा खासा पैसा कमा लिया हो तो आप गुनाह कर सकते हैं, लेकिन गुनहगार साबित नहीं हो सकते। पार्टी चलती रहती है और बिजनेसमैन अगली सुबह होने तक पार्टी करता रहता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उस बिजनेसमैन के साथ हमेशा साई की तरह चिपके रहते हैं। बेडरूम में भी उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगली सुबह मैनेजर होटल की लॉबी में अपने नए गेस्ट का वेलकम कर रहा था, तब उसके वॉकी टॉकी पे एक मैसेज आया। मैसेज सुनते ही वो चिल्लाने लगा। वो दौड़ता हुआ होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। रूम में पहुंचकर उसने देखा कि वो बिजनेस टाइकून अपने बेड के पीछे की दीवार से लटका हुआ है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है और उसकी खाल सड़ने लगी है। खबर फैल गई कि उस बिजनेस टाइकून की हत्या हुई है। फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो मालूम हुआ कि उस आदमी की मौत सांप के जहर से हुई है। यह एक पाइथन सांप था, जिसकी हाइट लगभग 15 फुट होती है, लेकिन 15 फुट का सांप बिना किसी की नजर में आए आखिर होटल के अंदर कैसे आया? पुलिस सीसीटीवी कैमरास देखे जा रही थी। उस आदमी की प्राइवेट सिक्योरिटी से पूछताछ भी हो रही थी। उसकी सिक्योरिटी में से 2 आदमी मिसिंग थे। जब होटल की छानबीन की गई तो उनकी भी नीली पड़ चुकी बॉडी फायर एग्जिट से मिली। असैसिनेशन का यह तरीका काफी समय से देखा नहीं गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस एपिसोड में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपको ले चलेगा उस समय में जहां इस तरह के असैसिनेशन अक्सर देखे जाते थे। ये दोनों कहानियां एक ही सब्जेक्ट के बारे में हैं। भारत की एक सीक्रेट सोसाइटी की, जिसमें लड़कियों को बचपन से तैयार किया जाता था विषकन्या बनने के लिए। आपने अगर मार्वल की फिल्में देखी हैं, तो आप जानते होंगे कि ब्लैक विडो के नाम से एक कैरेक्टर फेमस है। मार्वल की कहानियों में ये कैरेक्टर मशहूर है अपनी खूबसूरती और जानलेवा फाइटिंग स्किल्स के लिए। ये सुंदर भी है और खतरनाक भी। पहली नजर से किसी को भी दिल मोह लेने वाली और पलक झपकते ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देने वाली ये कैरेक्टर काफी हद तक विषकन्या की कहानियों से इंस्पायर्ड है। कई लोगों का मानना है कि विषकन्या सिर्फ एक मिथ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कंद पुराण, जो कि भारत के एंशियंट टेक्स्ट में से एक है, उसमें शिव की शक्तियों के बारे में और भारत से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक रहस्य विषकन्या भी है। इसके अलावा भारत के एक महान विद्वान चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में और मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर के कुछ मराठी सोर्सेस के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विषकन्या मिथ नहीं बल्कि सच है। कल्कि पुराण की माने तो विषकन्या चाहे तो एक नजर भर से ही किसी भी आदमी को पैरालाइज कर सकती है। अर्थशास्त्र और मुगलीय सोर्सेस विषकन्याओं की शक्तियों की साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करते हैं। साथ ही बताया गया है कि विषकन्या का इस्तेमाल प्रोफेशनल किलर्स के तौर पर किया जाता था। विषकन्या आम इंसानों से अलग होती है, इनके खून में जहर बहता है, इसीलिए कई दफा इनके लिए ह्यूमनॉइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये ह्यूमनॉइड्स बेहद खूबसूरत होती हैं। इनकी आंखें किसी सांप जैसी होती हैं, उनकी अंदरूनी खाल स्केल से भरी हुई होती है और उनकी जुबान बीच में से कटी होती है, वैसे ही जैसे सांप की होती है। पुरानी कहानियां बताती हैं कि बीते वक्त के राजा विषकन्याओं की सेना तैयार करवाते थे। प्यूबर्टी हिट होने के बाद से ही कई बार इन लड़कियों को दुश्मनों को मारने के लिए भेज दिया जाता था। एरिस्टोटल, जो कि दुनिया के एक बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को वेनमस वर्जन से बच के रहने को कहा था। वेनमस वर्जन्स यानी विषकन्या। भारत में एक और कहानी मशहूर है, जिसमें कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के मरने की वजह एक विषकन्या ही थी। उस जमाने में राजा पोरस ने अलेक्जेंडर की जीत के बाद उसे ट्रॉफी के तौर पर एक लड़की भेंट की थी। कहा जाता है कि वो लड़की एक विषकन्या थी, जिसके छूने भर से ही किसी भी इंसान की मौत हो सकती थी। विषकन्या की एक कॉमन टेक्निक होती है, वो टारगेट को यानी किसी आदमी को अप्रोच करेगी और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। इसके बाद वो उन्हें जहर मिलाकर एक ड्रिंक पिलाएगी। सामने वाले इंसान को भरोसा दिलाने के लिए वो उस ड्रिंक में से खुद दो घूंट पीकर दिखाएगी, लेकिन क्योंकि एक विषकन्या पर जहर का कोई असर नहीं होता, इसीलिए जहर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब वो आदमी उस ड्रिंक को पिएगा तो उसका नतीजा मौत ही होगी। विषकन्या को इस लायक बनाने के लिए बचपन से ही उन्हें छोटी छोटी मात्रा में जहर दिया जाता है। इस प्रोसेस को मिथ्री डेटिज्म कहते हैं। कहा जाता है कि सभी लड़कियां एक सी नहीं होती, किसी की बॉडी पर जहर का ज्यादा असर होता है और किसी पर कम, और इसीलिए कुछ लड़कियां छोटी उम्र में ही मर जाती हैं और जो बच जाती थी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें इंसानों और खास करके आदमियों के बारे में सभी तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें छोटी उम्र से ही कॉम्बैट में ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें शरीर को लचीला बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जिससे कि उनकी फाइटिंग टेक्निक्स किसी सांप जैसी हो जाती थी। इस टेक्निक की मदद से उन्हें महलों से भागने में मदद होती थी। जहां तक सिलेक्शन की बात है, तो इन विषकन्याओं को बचपन में ही इनके परिवार से अलग कर दिया जाता था। राज्य में पैदा होने वाले सभी बच्चों पर नजर रखी जाती थी। ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर्स मिलकर बच्चों की कुंडली बनाते थे और जिन लड़कियों के भाग्य में विडोहुड यानी विधवा होना लिखा होता था उन्हें उनके परिवार से अलग करके विषकन्या बनाने के लिए भेज दिया जाता था। ये बात इशारा करती है कि मार्वल ने अपने कैरेक्टर का नाम ब्लैक विडो क्या सोच के रखा था। असल में तो ब्लैक विडो उस मकड़ी की किस्म का नाम है जो अपने ही मेटिंग पार्टनर को मार देती है, लेकिन विदेशी कहानियां काफी बार भारत की पौराणिक कैरेक्टर से मिलती जुलती दिखाई देती है। विषकन्याओं की कई कहानियां हैं। महाभारत में भी एक कहानी है जब भीम किसी कारण से एक लड़की का पीछा करते हुए उसके रूप से मोहित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण वहां आकर भीम को रोकते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि ये शत्रु की साजिश के चलते हुए भेजी गई विषकन्या है और भीम को उससे दूर रहना चाहिए। इससे आप ये समझिए कि भीम जैसे तपस्वी और शक्तिशाली योद्धा को अपने जाल में फंसा लेने वाली विषकन्या आखिर कितनी खतरनाक होगी। विषकन्या का सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी सीमित है। अक्सर लोग इसे भ्रम या मिथ कहकर झुटला देते हैं, लेकिन हिस्ट्री और एंशियंट टेक्स्ट कुछ और ही बात करते हैं। विषकन्या का सच क्या है? क्या ये मुमकिन है कि आज भी इन विषकन्याओं की कोई सीक्रेट सोसाइटी है? क्या ये हमारे ही बीच रह रही हैं? चाणक्य ने कहा था कि विषकन्या की संख्या कोई 5 या 10 या 50 लड़कियों की नहीं है, ये एक पूरी आर्मी है। जिस तरह से कहानी की शुरुआत में वो बूढ़ी औरत अकेले ही 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है, ये कोई आम बात नहीं है। हमारी इस धरती पे न जाने ऐसे कितने और राज हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। इंडिया क्लासिफाइड के इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम भारत को जानने के ये प्रयास जारी रखेंगे। आपको विषकन्या के विषय के बारे में अगर कोई भी जानकारी है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, रेड एफ एम पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए और मुझे @RJPoorab पर इंस्टाग्राम पे DM कीजिए और बताइए कि कैसे लगी आपको विषकन्या की ये कहानी। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।
You are listening to Red Podcast India Classified. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.